ஓம் சாந்தி. बाबा ने हम सब बच्चों को इतने ज्ञान के अथाह रत्न दिए हैं और ये रत्न हमें इसीलिए मिले हैं ताकि इस रत्न के माध्यम से हम अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ और सुरक्षित रखें, क्योंकि वर्तमान समय अनुसार जब हम समय की ओर देखते हैं तो ये महसूस होता है कि समय की गति तीव्र होती जा रही है और साथ ही साथ जो परिवर्तन है बाह्य दुनिया के अंदर वो परिवर्तन भी एक तीव्र गति को पकड़ रहा है. उसमें भी जैसे जैसे समय समाप्ति की ओर जाता है वैसे वैसे कई प्रकार के पेपर भी आएंगे, कई प्रकार की बातें भी आएंगी जो हमारी स्थिति को हलचल में ले आएंगी. और इसीलिए जब हमारा सारा पुरुषार्थ इसी के लिए है कि अंतिम समय तक हमारी स्थिति ऐसी बन जाए, अचल, अडोल, अविचलित, छोटी छोटी बातों में स्थिति अब विचलित नहीं होनी चाहिए. या हमारे स्थिति में एक प्रकार के मूड स्विंग्स जो कहे वो मूड स्विंग्स भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है कि अंतिम समय जैसी हमारी स्थिति होगी वैसी ही हमारी गति होगी. और इसीलिए हमारा सारा पुरुषार्थ उसी बात को लेकर के रहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी स्थिति अविचलित रहे. तो अपने स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, किस बात का अभ्यास करना चाहिए, तो आज हम आपको पांच बातें बताएंगे कि जिस पांच बातों के माध्यम से हम अपनी स्थिति की सुरक्षा कर सके. सबसे पहली बात है कि हमारी स्थिति पर जो पहला अटैक होता है किसका होता है, पहला अटैक कहां से आता है. पहला अटैक होता है देह अभिमान का, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि दुनिया में जब होते हैं तो एक मैं और मेरेपन का भाव ये हमारी स्थिति को सबसे अधिक अटैक करता है. और इसीलिए इस अटैक से अपने आप को बचाने के लिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर श्रेष्ठ स्वमान दिए. और इसीलिए जब भट्ठी में आप आए हैं तो नेचुरल है कि हर रोज आपको स्वमान मिले, उसी स्वमान में सारा दिन स्थित रहने का अभ्यास भी करते हैं। उसमें जब स्थित होते हैं तो कई बातों से उपराम होना स्वाभाविक हो जाता है, और उसमें भी विशेष तेरे मेरे की बातें या मैं और मेरे की बातों से हम सहज डिटैच हो सकते हैं। तो पहली बात यही है कि स्वमान इतना श्रेष्ठ मिला है, और उस स्वमान में जब हम स्थित हो जाते हैं तो धीरे धीरे अपने आसपास एक ऐसा ओरा तैयार करने लगते हैं। जो स्वमान मिला है खाली रिपीट करने के लिए नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल उस स्वरूप में अपने आप को स्थित करने के लिए। और जब अपने आप को उस स्वरूप में स्थित करते हैं तो बहुत सुंदर एक स्थिति हमारी बन जाती है। तो ये स्वमान का अभ्यास खाली भट्ठी तक सीमित न हो, बहुत सुंदर लिस्ट बनाई हुई है कि स्वमान की लिस्ट क्या है, पूरी लिस्ट आप लोगों के पास भी होगी। अगर लिस्ट न भी हो तो बाबा की मुरली से, चाहे वरदान में चाहे स्लोगन में, हमें एक श्रेष्ठ स्वमान सारे दिन के लिए मिलता है। और अनुभव ये कहता है कि जिस दिन जो बातें आने वाली होती है उसी के लिए वो स्वमान होता है, और उस स्वमान का भी हम अभ्यास करें कि आज बाबा ने मुरली में हमें ये स्वमान दिया, उसका स्वरूप बनते जाए। तो जैसे जैसे स्वरूप बनते जाते हैं महसूस हम ये करते हैं कि मानो कोई पेपर आया भी तो वो पेपर में हमें हमारी अवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वो एक मैजिक का काम करता है, एक जादू का काम करता है। जिस तरह आप सबको ये अनुभव है कि मानो कोई बात को लेकर के उलझन हुई या कोई मन के अंदर सूक्ष्म में प्रश्न आया भी तो उस दिन मुरली में वो जवाब मिलता है। जो मन के अंदर बात होती है ऐसा महसूस होता है कि बाबा ने आज उसका जवाब दे दिया। तो मन की बात के लिए अगर बाबा जवाब दे देता है तो क्या आने वाले घटनाओं के विषय में बाबा हमें सावधान नहीं करता होगा? और इसीलिए मुरली में उस दिन वही स्वमान, वही स्लोगन या वही कोई बात मुरली के अंदर ऐसी होती है जैसे कि हमारी भूमिका तैयार करती है, हमें संकेत देती है। और जब उस स्वमान को लेकर के हम चलते हैं तो वो जो घटनाएं घटती है और तुरंत स्मृति आ जाती है कि हाँ आज बाबा ने यही तो बात कही मुरली के अंदर या वरदान के अंदर या स्लोगन के अंदर, और तुरंत एक अटेंशन आ जाता है। और अटेंशन आते ही सावधान, और उस स्वमान में अपने आप को स्थित कर देते हैं। कई बार ये भी महसूस किया होगा आपने कि चलो उस वक्त विस्मृत हो जाती है, वो बात। लेकिन जैसे ही वो समय पास हुआ कि तुरंत ध्यान आता है कि अरे बाबा ने तो पहले ही बता दिया था, हमारी विस्मृति हो गई है ना। अगर स्मृति स्वरूप होते थे तो स्मृति स्वरूप होने से समर्थी ऐसी आ जाती थी कि ये पेपर में पास होना बहुत सहज हो जाता था। फिर हम दोबारा अटेंशन रखना चालू करते हैं। तो भाव यह है कि बाबा उस दिन के लिए हमें तैयार करता है, मन की बात का उत्तर दे सकता है, तो आने वाली घटनाओं के विषय में भी पहले ही हमें सावधान करता है। लेकिन जब हमारा अटेंशन रूपी पहरेदार टाइट नहीं होते हैं तो वो बात विस्मृत हो जाती है, और विस्मृति के कारण ही हम उस पेपर में कहीं न कहीं ठोकर खाते हैं, हार खाते हैं, महसूसता आती है। भावार्थ ये कि इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये अटेंशन के पहरेदार को टाइट करो। मुरली खाली सुनने के हिसाब से हमें नहीं सुनना है, लेकिन मुरली को जितना आत्मसात कर सकते हैं। आजकल तो विज्ञान ने इतनी सुविधा दे दी कि हर एक के मोबाइल में भी जब मुरली आ जाती है तो उसका फायदा जरूर हम ले, क्योंकि बाबा ने कहा है कि साइंस के साधन भी आपकी सेवा के लिए है, ताकि बाबा के बच्चे कहीं भी कोई भी रूप से गफलत में आकर के माया के कोई भी छोटे मोटे पेपर से भी हार न खा ले। ये सुविधा बाबा ने हम बच्चों के लिए दी, तो इसीलिए इस सुविधा का हम जीवन के अंदर लाभ भी ले और उसका अनुभव भी करें। ये भी महसूस करेंगे आप कि जिस दिन जिस सामान का बहुत दिल से अभ्यास किया होता है और जब उस परिस्थिति में या कोई घटना में हमारी विजयी हो जाती है तो कितनी खुशी होती है। ये महसूस आती है कि हाँ बाबा हमारे साथ है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा की श्रीमत जो मिली होती है यही तो बाबा का हाथ है, और ये हाथ पकड़ करके जैसे जैसे हम चलते जाते हैं तो हार खाने का तो सवाल ही नहीं होता है, गिरने का या चोट खाने का सवाल ही नहीं होता है। कोई हमारी अवस्था को हलचल में ला नहीं सकते हैं। तो पहली बात हमारी स्थिति की सुरक्षा के लिए स्वमान, बहुत सुंदर बाबा ने हम बच्चों को स्वमानधारी बनने के लिए कहा, क्योंकि जो स्वमानधारी होगा वो उस स्वमान की सीट में जब सेट होता है तो उसके पैर मिट्टी में भी नहीं जाते हैं, मिट्टी यानी देह अभिमान की मिट्टी में ही नहीं होते हैं, तो नेचुरल है कि वो मिट्टी का अटैक हमारे ऊपर नहीं हो सकता है। दूसरी बात, दूसरा अटैक कहां से आता है, कहां से आता है, जो आज की दुनिया में बहुत कॉमन है, कहां से अटैक आता है हमारी स्थिति पर, दूसरा अटैक हमेशा होता है व्यर्थ चिंतन या नेगेटिव चिंतन, पर चिंतन, वहीं से अटैक आएगा। और जब व्यर्थ चिंतन जो आजकल दुनिया में बहुत अधिक हो गया है और उस व्यर्थ चिंतन में जितना मन रमने लगता है, आरंभ में तो लगता है कि ठीक है, सारा समय थोड़ी कोई ज्ञान की बातों का ही चिंतन कर सकेंगे, लेकिन जब ये व्यर्थ चिंतन और धीरे धीरे ये व्यर्थ चिंतन नकारात्मक चिंतन में चलने के द्वार खोल देता है और वहीं से वो चला जाता है, और जब नकारात्मक चिंतन में जाता है तो कितनी अंदर की एनर्जी हमारी ड्रेन हो जाती है और इसीलिए मन दुर्बल होने लगता है, मन कमजोर होने लगता है और फिर यही हमारी स्थिति पर अटैक करता है। तो इसीलिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर साधन दिया, ज्ञान का मनन चिंतन, पॉजिटिव चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन में रहे। ये स्वचिंतन, शुभ चिंतन, सकारात्मक चिंतन या ज्ञान का मनन चिंतन, ये हमारी स्थिति को उस पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत या व्यर्थ चिंतन, नेगेटिव चिंतन से अपने आप को मुक्त रखता है और हमारी स्थिति को सुरक्षित रखता है। जितना व्यक्ति ज्ञान का मनन चिंतन करता है और कुछ सोचने लिए नहीं है, कोई ना कोई पॉइंट को लेकर के हम अपने चिंतन को उस दिशा में ले चले, उससे फायदा क्या होगा कि जब हम स्वचिंतन या ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो उससे हमारे अंदर की थॉट एनर्जी एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। संकल्प हमेशा वाइब्रेशन क्रिएट करता है और ये वाइब्रेशन इतने सकारात्मक और स्ट्रांग वाइब्रेशन होता है जो हमारे आसपास एक कवच तैयार करता है, शुभ चिंतन का, श्रेष्ठ चिंतन का। और ये जो कवच है वाइब्रेशंस का, पॉजिटिव वाइब्रेशंस का, वो हमारी स्थिति को सुरक्षित रखता है, क्योंकि ये एक ऐसा ओरा तैयार करता है जैसे देवी देवताओं के चारों ओर एक प्रकाश का ओरा होता है, एक प्रकाश का प्रभा मंडल होता है। ये प्रकाश का प्रभा मंडल होता ही है वाइब्रेशंस का। और आज की दुनिया के अंदर द पावर ऑफ वाइब्रेशंस के ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई ये महसूस करता है कि चिंतन से ही ये वाइब्रेशन जो क्रिएट हुआ वो वाइब्रेशंस देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये भी जरूर है कि आजकल की दुनिया के अंदर ऐसे कैमरास निकले हैं जिस कैमरास से वो फोटो भी खींच सकते हैं कि व्यक्ति के आसपास कौन से वाइब्रेशन का ओरा है, कौन से वाइब्रेशन का प्रभा मंडल है। और बाबा की मुझे पहले की मुरलियां याद आती है कि बच्चे लोग ऐसे साधन बनाएंगे जिसके माध्यम से देखेंगे कि आपकी योग की शक्ति कितना है। दुनिया के अंदर इसीलिए ज्ञान सरोवर में भी थॉट लैब बनाया है और ये थॉट लैब ये बताते हैं कि आपके संकल्पों के गति के हिसाब से आपके संकल्पों की क्वालिटी क्या होगी। तो ऐसे ऐसे साधन निकलने लगे हैं जो आकर के, खास योगी जब हम अपने आप को कहलाते हैं तो योगियों के ऊपर ही ये प्रयोग करेंगे। और उस समय अगर हमारी स्थिति हलचल वाली होगी, बहुत ज्यादा नकारात्मक या व्यर्थ चिंतन चलने वाली होगी, तो नेचुरल है कि वो जो वाइब्रेशंस वहां हमें दिखाई देंगे कंप्यूटर पर, हमें भी आश्चर्य होगा कि भाई इतने साल का योग और क्या अभी तक यही वाइब्रेशंस हमारे क्रिएट हो रहे हैं। तो कैसे हम दूसरों को कहेंगे कि हाँ योग से इतनी प्राप्ति है, योग से इतने फायदे हैं, क्योंकि जहां मेरे संकल्पों के ऊपर ही मेरा अधिकार अभी तक नहीं है, तो कैसे कहेंगे। तो इसीलिए अब समय के हिसाब से जब ऐसे साधन दुनिया में निकल गए हैं, तो अब मुझे कितना सावधान रहना होगा, क्योंकि जब चारों ओर लोगों को पता है कि हाँ ये योगी है, ये ब्रह्मा कुमारी इसका योग करता है, तो अचानक एक दिन आकर के कहेंगे लाओ तेरा आकर के हम चेक करते हैं, फिर क्या होगा। तो इसीलिए बाबा ने हमें ये बात कही है कि अपनी अवस्था को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो वाइब्रेशंस हमारे रिलीज हो और उस वाइब्रेशन से उनको प्रैक्टिकल प्रमाण मिलेगा कि हाँ योग की स्थिति से कितना मन स्टेबल, कितनी मन की स्थिरता, कितना उनके चारों ओर जो एक पॉजिटिव एनर्जी का ओरा है, ये पॉजिटिव एनर्जी का ओरा कितना पावरफुल है। आने वाले समय के अंदर यही पॉजिटिव एनर्जी का ओरा हमारी हेल्थ के लिए भी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत काम करेगा, क्योंकि उस वक्त वाइब्रेशंस का ही प्रभाव और अनेक आत्माओं के नेगेटिव वाइब्रेशंस का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे तरफ भी आता होगा, इसीलिए वो हमारी स्थिति को अटैक न करे। कई बार ये महसूस किया होगा प्रैक्टिकल जीवन में कि सुबह से उठे, दिन बहुत अच्छा, हर मर्यादा का भी पालन किया, मुरली भी पढ़ी, योग भी किया, सब कुछ, लेकिन स्थिति वो नहीं है। ऐसा महसूस होता है जैसे डाउन है, आज स्थिति बहुत लो है। और कारण क्या होता है, क्योंकि नेचुरल है कि पॉजिटिव एनर्जी जब व्यक्ति के अंदर होती है तो वो वाइब्रेशन इतना सुकून देने वाला होता है कि हमारे आसपास की जो आत्माएं हैं उनको भी महसूस होता है। तो इसीलिए उनका आकर्षण स्वाभाविक होगा और वो नेगेटिव वाइब्रेशन के वश है, वीक वाइब्रेशन है उनके, तो पावरफुल वाइब्रेशन के तरफ वो स्वतः मन से आकर्षित होते हैं। और जब मन से आकर्षित होते हैं तो नेचुरल है कि उनके मन के अंदर हमारे प्रति बहुत ऊंची भावना न भी हो, वो सोचते हो कि भाई ऐसा साथी हमें मिल जाए, ये मिल जाए, तो हमारे प्रति जो उनके नेगेटिव वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन हमारी स्थिति को बहुत इफेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट करते। माना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो जैसे कट कर रहे हैं, उनके वाइब्रेशंस हमारे वाइब्रेशंस को जैसे कट करते हैं और इसीलिए कुछ हुआ भी नहीं। ज्ञान योग का चार्ट भी हमारा ठीक है लेकिन फिर भी जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसे नहीं, ऐसा महसूस होगा। जैसे मुझे याद आता है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन की बात है, एक बार एक महिला ने जाकर उसको, मैंने रोज उसके प्रति सोचती थी और स्वामी विवेकानंद ये बात को महसूस करते थे कि जैसे किसी के इम्प्योर वाइब्रेशंस मेरे स्थिति को अटैक कर रहे हैं। तब वो महिला एक दिन सामने जाकर कहती है कि मैं आपके आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्यों भाई, क्या मिलेगा, मैं तो एक सन्यासी हूं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा चाहती हूं कि आपके जैसा अगर साथी हो तो जो संतान होंगी वो कितनी ऊंची होगी, हमारी जो क्रिएशन होंगी, हमारी जो संतान होंगी वो कितनी ऊंची होंगी, कितनी श्रेष्ठ होंगी। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, इतना टाइम वेट करना बहुत लंबा समय है, तुम एक काम क्यों नहीं करती, मुझे ही अपना बच्चा समझ ले, शादी करे, साथी बनू, उसके बाद बच्चा पैदा हो, वो बच्चा बड़ा हो और उसके बाद वो नाम करे, बहुत लंबा समय हो गया, तुम एक काम कर, मुझे ही अपना बच्चा बना ले, एडॉप्ट कर ले चाहे तो, और एडॉप्ट करके मेरी मां बन जा तू, लेकिन मेरे प्रति ऐसे इम्प्योर वाइब्रेशंस को जनरेट मत कर, क्योंकि वो मेरी स्थिति को कहीं ना कहीं नीचे लाने के लिए निमित्त बनती है। भावार्थ ये कि इस तरह से जब हम समाज में रहते हैं तो नेचुरल है कि जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर होती है, उस पॉजिटिव एनर्जी के प्रति जब हमारा ध्यान कम होता है तो बाहर के नेगेटिव वाइब्रेशंस अटैक जरूर करेंगे और हमारी स्थिति को कहीं ना कहीं डाउन करेगी, और उस समय हमें महसूस नहीं होता है कि क्यों, पता नहीं आज मूड ही नहीं आ रहा है, या सब कुछ करने के बाद भी पता नहीं क्यों मेरे अंदर जो एक उमंग उत्साह था, मेरा उमंग उत्साह के पंख जैसे किसी ने काट दिए हो, तो स्थिति डाउन होना स्वाभाविक है। इसी तरह परिवार के अंदर, माता पिता के अंदर भी ये संकल्प चलता है, चाहे माता पिता के अंदर संकल्प चलता, चाहे किसी और का संकल्प चलता, किसी और का आकर्षण होता है और वो मेरी स्थिति को भी डाउन करने के लिए निमित बन जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जितना श्रेष्ठ चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन, ज्ञान का मनन चिंतन हमारा चलता रहेगा तो एक बहुत पावरफुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हम अपने चारों ओर ऐसा कवच तैयार कर देंगे जिसमें हमारी स्थिति सुरक्षित रहती है। तो ये दूसरा तरीका, पहला है स्वमान, दूसरा है शुभ चिंतन या स्वचिंतन, तीसरा स, पांचों बातें स से है। तो तीसरा स है संतुलन, संतुलन। जीवन को बैलेंस से चलाना बहुत आवश्यक है। अगर बैलेंस नहीं रहा, अगर बैलेंस बिगड़ गया, तो बैलेंस बिगड़ने से भी जब एक तरफ हम हो जाते हैं, अर्थात इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, तो वो इम्बैलेंस भी हमारी स्थिति को डामाडोल जरूर करेगी। इसीलिए स्व और सेवा का बैलेंस हो, जो भी बैलेंस बाबा ने बताए हैं हम सबको, चाहे रमणीकता का, गंभीरता का बैलेंस, लव एंड लॉ का बैलेंस, भौतिकता आध्यात्मिकता का बैलेंस, जीवन के अंदर ये बैलेंस बहुत आवश्यक है। अगर बैलेंस से नहीं चलते, संतुलन जीवन के अंदर नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं वो हमें नीचे की ओर खींचने का एक माध्यम बन जाता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि योग माना क्या है, योग माना संतुलन, योग माना बैलेंस, जीवन को बैलेंस में चलाना बहुत आवश्यक है। जहां झुकाव आया, अगर बैलेंस नहीं रहा तो एक तरफ का पलड़ा झुक जाता है, तो जहां झुकाव आया नेचुरल है वहां से हमारी स्थिति डाउन होनी स्वाभाविक है। इसीलिए बाबा कहे, जितना आप अपने जीवन के अंदर संतुलन से चलते जाएंगे, सहजता से चलते जाएंगे, उतना सरलता, सहजता, ये क्वालिटीज का भी जीवन के अंदर संतुलन बहुत आवश्यक है। इसी क्वालिटीज के माध्यम से हम जीवन के अंदर जैसे अपने आप को सहज डिटैच रख सकते हैं, जिसको बाबा ने कहा न्यारा और प्यारा, ये भी बैलेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं रहा, बहुत ज्यादा न्यारा हो गए तो भी किसी का हमारे प्रति कोई ना कोई रूप से अटैक होगा, बहुत ज्यादा प्यारा बनने गए तो भी अटैक जरूर होगा। तो वहां अंदर में हलचल क्रिएट होना स्वाभाविक है। इसीलिए आवश्यकता है कि ये समय में, जैसे जैसे समय अंतिम घड़ियों की ओर जा रहा है, उतना हम बैलेंस से चलेंगे तो हमारी गाड़ी जैसे ठीक चलेगी, ठीक गति में रहेगी और ठीक गति के साथ आगे बढ़ेगी, कहीं भी चांस नहीं होगा लुढ़क जाने का। इसीलिए ये संतुलन बाबा के जीवन में भी संतुलन था। हर कोई ये महसूस करते थे कि बाबा संतुलन से चलते थे, स्वस्थिति सेवा का इस तरह से संतुलन था बाबा के जीवन में, मम्मा के जीवन में। तो ये संतुलन हमारी धुरी को बहुत सुंदर तरीके से रखती, यानी हमारी स्थिति हमारी धुरी है, तो उस स्थिति को जैसे संभालती है। लेकिन जहां ये इम्बैलेंस आया जीवन के अंदर, वहां हमारी स्थिति के ऊपर सबसे पहला उसका प्रभाव पड़ना ही है और वहां हलचल क्रिएट हो जाएगी। इसलिए बाबा कहे संतुलन में चलो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, न बहुत न्यारा न बहुत प्यारा, लेकिन बैलेंस से जब हम चलते हैं इस ब्राह्मण जीवन में, बैलेंस रख करके चलना बहुत आवश्यक है। ये बैलेंस ही हमारे जीवन को हमेशा सुरक्षित रखती है। बातचीत करने में भी बैलेंस हो, जो भाषा का प्रयोग हो रहा है उसमें भी हमारी एक रूहानियत या रॉयल्टी अंदर बनी रहे, और जब हमारे अंदर ये बैलेंस होगा तो सामने वाला भी उसी रिस्पेक्ट के साथ आकर के बातचीत में रहेगा। इसीलिए कहा कि ये बैलेंस अनेक आत्माओं के लिए अंदर भी बहुत सहज एक श्रेष्ठ भाव पैदा करती है, एक सम्मान का भाव स्वतः पैदा करती है। और हमें जीवन के अंदर यही स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आवश्यकता है कि हर बात का, हर वैल्यूज का भी बैलेंस, हर शक्ति का भी बैलेंस। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि जब बाबा ने कहा कि बच्चे ये अष्ट शक्तियों का बैलेंस, यही बार बाबा बताते हैं के सहन करना, सामना करने का भी बैलेंस हो, कहां सामना करना कहां सहन करना है, निर्णय और परखते हुए निर्णय करना, उसका भी बैलेंस चाहिए। तो ये क्वालिटीज का जितना हमारे जीवन के अंदर संतुलन होगा, बैलेंस होगा, हमारी जीवन की गाड़ी बहुत सुंदर चलेगी, हमारी स्थिति हमेशा हर प्रकार के प्रभाव से मुक्त रहेगी। नहीं तो वो प्रभाव कहीं ना कहीं हमें खींचते जाएंगे, एक ऐसे बहाव के तरफ ले जाएंगे। इसलिए दिखाते हैं शास्त्रों के अंदर कि पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, सिद्ध होते थे, और उनके पास क्या सिद्धि होती थी, पानी पर भी चलने की सिद्धि होती थी, अग्नि पर चलने की सिद्धि होती थी, है ना? जमीन से ऊपर उठने की सिद्धि होती थी। वास्तव में ये हमारी अवस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पानी पर चलना माना पानी के अंदर एक बहाव है, बह जाने वाले न हो हम, लेकिन जब व्यक्ति संतुलन में चलता है तो वो बहता नहीं है। कई बार देखते हैं कि कई लोग भावनाओं में बह जाते हैं, और जब भावनाओं में बह गए तो भी क्या होता है, अंत में जीवन ही खत्म हो जाता है, योगी जीवन ही खत्म हो। इसलिए न भावनाओं में बहना है, न कोई आग हमें जला सके, कोई भी विकारों की आग हमें जला न सके। ये सिद्धि यहां की है, और उसी का ही गायन शास्त्रों में जब लोगों को याद आया तब लिखा इन्होंने कि आग पर चलने की शक्ति थी, या पानी पर चलने की शक्ति थी, या धरनी से उठना ये सिद्धि थी। माना देह अभिमान की धरनी हमें नीचे नहीं खींच सकती थी, उसे ऊपर सहजता से हम रहते थे। ये तो योगी जीवन है, यही तो योगी जीवन है। और इसी बात की स्मृति जब उनको आती है भक्ति मार्ग के अंदर, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हाँ भाई ऐसे ऋषि भी थे। तो बाबा ने इसीलिए जो हमें टाइटल दिया है कि तुम राज ऋषि हो। राज ऋषि इसीलिए कहा, राज भी है ऋषि बैलेंस, न्यारा भी है प्यारा भी है बैलेंस। तो राज ऋषि के अंदर एक बेहद का वैराग्य भी होता है, और बेहद के वैराग्य के साथ साथ रहना भी उधर ही है। ये भी बाबा ने हम बच्चों को बैलेंस में चलना सिखाया। अगर हम अपने स्थान के ऊपर बैलेंस में नहीं चले और वहां से भागने का प्रयत्न किया, जहां भी गए वो बैलेंस अगर आया नहीं, वो कला नहीं आई जीवन के अंदर, तो वहां पर भी भागने के बाद भी वहां भी बहाव में जाना, अग्नि में जलना, ये अनुभव होगा। इसीलिए हम जहां है जिस स्थिति में है वही इस बैलेंस के माध्यम से इस सिद्धि को इस योगी जीवन के अंदर अनुभव करें। तो बैलेंस बहुत आवश्यक है, बिना बैलेंस के योगी जीवन नहीं। चौथी बात, संतुलन के बाद साइलेंस। कई चीजों में बाबा जैसे कहते हैं, बच्चे मुख में मुलरा डाल दो, मुरली में कई बार हम सुनते मुख में मुलरा डाल दो बच्चे। हमें किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, कोई कुछ कह, क्योंकि वहां से ही हलचल क्रिएट होगी। क्योंकि जहां पर भी उन्होंने अपनी वाक शक्ति से अगर मुझे किसी बात के लिए ऐसा चुप कर दिया तो हलचल होगी अंदर में कि नहीं होगी। इसलिए जहां कहीं ऐसा वातावरण देखो, क्योंकि आजकल की दुनिया के अंदर अगर कुमार कोई बात कह रहा है तो कई बड़े ऐसे होते हैं कि ये हमारी बात को झुठला रहा है, उनका ईगो हर्ट होता है। और उनका ईगो हर्ट होगा तो क्या करेंगे, चाहे आपके कोई मित्र ही हो जो योगी नहीं है, दुनिया में जो भी है वो तो इगोइस्टिक है, वो तो देह अभिमान के वश है। आपने कोई बहुत अच्छी बात कही लेकिन उसको फील हुआ कि शायद मुझे सुना रहा है, और उसका ईगो को जहां थोड़ी भी ठेस लगी तो उसके बाद क्या करेगा। तो इसलिए बाबा कहे, आज के समय के अंदर न मुझे किसी की कोई भी बात को देख करके उसको मैं उस एंगल से ज्ञान सुनाने का प्रयत्न करूं, ये मेरा काम नहीं है। क्योंकि जहां उनको ये चोट के रूप में महसूस होगी तो वो भी हमारी स्थिति को डाउन करने में, खींचने में, नीचे ले आने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जहां आपको ऐसा लगे साइलेंस को अपनाओ। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्य मुखी सदा दुखी। अंतर्मुखी हो जाओ, कछुए की तरह अपने आप को समेट लो। आजकल की दुनिया में फैशन है कछुआ भेंट करने की। फेंगशुई के हिसाब से कछुआ भेंट करते हैं, किस लिए? कहते गुड लक आता है। उस कछुआ की लेन देन करने से गुड लक आया या नहीं आया मालूम नहीं, लेकिन बाबा ने जो हम बच्चों को कहा कछुआ बन जाओ तब गुड लक जरूर आएगा। देने से नहीं आता, बनने से आता है। और इसीलिए बाबा ने मुझे यही कहा, अपनी इंद्रियों को इस तरह से संकीर्ण लो, इस तरह से डिटैच हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्य मुखी सदा दुखी। बहुत ज्यादा जब वाचा में आ जाते हैं, अपनी साइलेंस की स्टेज से हम नीचे उतर करके अधिक वाक शक्ति में आ जाते हैं, तो नेचुरल है कि हमारी स्थिति गड़बड़ जरूर हो जाएगी, क्योंकि अटेंशन कम हो गया। और वहां पर अगर कोई व्यक्ति का अहम को ठेस लगा, वो आपको ठेस पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, और उस वक्त भी हम अंतर्मुखी नहीं बने, साइलेंस के साधन को, साइलेंस के कवच को नहीं अपनाया, तो वो हमारा भी अपमान करने में, और अपमान हुआ ये महसूस हुआ, तो स्थिति क्या हो जाएगी? स्थिति सुरक्षित रहेगी, या वो स्थिति फिर उसका प्रवाह कितना दिन तक चलेगा? इसीलिए बाबा कहे जहां पर भी आप देखो वहां पर साइलेंस, तू सही है। बड़ी दादी जी हमेशा कहती थी, हार मानी बच जाए, बच गए, यही तो हार्मनी क्रिएट करने का तरीका है कि भाई तू सही है। इतना बोलने में हमारा क्या जा रहा है? लेकिन अगर उसका ईगो सुरक्षित रहा तो हमारी स्थिति भी सुरक्षित है। भाई तू सही है, तू सही है। किसी के साथ भी हमें कोई आर्ग्यूमेंट में जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए जब आर्ग्यूमेंट में जाना नहीं है तो हम अपने आप को ठीक रखें, क्योंकि यही समय है ठीक रखने का। साइलेंस को अपनाओ, सुखी हो जाओ। साइलेंस। और पांचवा स कौन सा रहे? स्वमान का स्वरूप बनना। दूसरा स्वचिंतन, शुभ चिंतन। तीसरा संतुलन से चलना जीवन के अंदर, बैलेंस्ड लाइफ हो। चौथा साइलेंस, और पांचवा संयम। बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन के अंदर हमें संयम, नियम और मर्यादाएं दी। और ये संयम, नियम और मर्यादा किस लिए दिया है बाबा ने? ये हमारी स्थिति की सुरक्षा के लिए दिया है। जितना अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमारा संयम वाला जीवन होगा, उतना कोई भी व्यक्ति मुझे मजबूर नहीं कर सकेगा, कोई भी इंसान मुझे मजबूर नहीं करेगा। लेकिन जहां संयम नहीं है, थोड़ा भी हम संयम, नियम, मर्यादाओं में हल्के हुए कि तुरंत कोई ना कोई उसी बात को पकड़ करके हमें मजबूर करने का प्रयत्न करेगा। और जैसे हम मजबूर हुए कि चलो उसको खुश करना है, बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा है, यानी बाबा की बात को भी जैसे ही हमने ट्विस्ट किया उस संयम के लिए खास करके, वहां फिर बाबा मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, क्योंकि मैंने वो बाबा का हाथ छोड़ा। इसीलिए तो बाबा ने हम बच्चों को ऐसी ऐसी श्रीमत दी है, ये श्रीमत ही तो हमें सुरक्षित रखती है, चाहे संयम के रूप में हमें दिया हुआ है कि बच्चे ये संयम के साथ चलो, इस संयम को अपना करके चलो। जहां उस संयम के साथ, संयम में बहुत बड़ी ताकत होती है, संयम नियम और मर्यादाओं में इतनी ताकत होती है कि बड़े से बड़े पहाड़ को हिला सकते हैं, और उसमें प्राप्ति भी बहुत अधिक होती है। कष्ट महसूस होता है, हो सकता है कि वो संयम के पालना करने में कष्ट भी महसूस होता हो, तकलीफ हो रही हो, लेकिन फिर भी जब जो व्यक्ति बाबा के उस संयम के ऊपर दृढ़ रहता है, दृढ़ प्रतिज्ञा करके चलता है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि हर कोई उस संयम के आगे नतमस्तक हो जाता है। कई लोग उस बात को अप्रिशिएट करने लगेंगे कि इतनी छोटी सी एज में ऐसे कलयुग के अंदर ऐसा संयम रखा है, महात्मा से कम नहीं समझते। यही संयम नियम मर्यादाएं एक न एक दिन उन्हें हमारा दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराएगा, दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार, कि ये दिव्य व्यक्तित्व है, ये एक फरिश्ता है। तो दिव्य व्यक्तित्व या फरिश्ते रूप का साक्षात्कार तभी करा पाएंगे जब हम अपने संयम नियम और मर्यादा पर दृढ़ है, तो दृढ़ संकल्पधारी। क्योंकि कोई भी संयम में आप देखेंगे कि व्यक्ति का अंदर का विल पावर बहुत बढ़ जाता है, और उस विल पावर से वो जो चाहे वो कर सकता है। इतना अधिक विल पावर विकसित होने लगता है कि सब उसके आगे नतमस्तक जरूर। भावार्थ ये कि कहीं पर भी हमारे संयम नियम मर्यादा को लेकर के हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बैलेंस से जरूर चलना है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्योंकि एक दिन अगर कॉम्प्रोमाइज करके हम नीचे उतरे तो उसके बाद हर बार हर बात के लिए वो हमें नीचे खींचते रहेंगे। इसीलिए बहुत सुंदर बात कल मैं वहां ऊपर ज्यूरिस्ट विंग में भी बता रही थी कि कई बार कई संयम ऐसे होते हैं कि आरंभ में हमें कष्ट महसूस कराते, उसके बाद धीरे धीरे उसमें हम डल जाते हैं, फिर हमें कष्ट महसूस नहीं होता। जैसे आरंभ में सुबह 3:30 बजे उठना मुश्किल लगता है कि नहीं लगता है, कष्ट महसूस होता है, लेकिन जो उस अमृत पान करता है उसके बाद, अमृत पान जिसने किया, उसका रस जिसने लिया, उसके लिए फिर वो चीज उसको आकर्षित करती है कि रोज मैं ऐसा अनुभव करूं, रोज ऐसा अमृत पान करूं, तो फिर उसकी आंखें सहजता से खुल जाती है। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, कष्ट महसूस हुआ, लेकिन प्राप्ति अमृत के बराबर। लेकिन आज की दुनिया में जहां संयम नियम मर्यादाएं नहीं है, वहां आरंभ में सहजता है, लेकिन बाद का जीवन कष्टदायी हो जाता है, बाद में विष का अनुभव कराता है। इसीलिए पहले कष्ट हो और फिर अमृत की प्राप्ति हो, या पहले सहजता हो अमृत जैसा हो और बाद की जीवन विष वाली हो, उसके बदले बाबा ने इतना सुंदर हमें ये कवच दिया है और इस कवच को ओढ़ते हुए पहन करके चलते हुए जितना उसमें दृढ़ संकल्पधारी हम बन जाते तो जहां दृढ़ता है वहां सफलता अनुभव होती है। हर कदम में सफलता सहज अनुभव होती है और ये बात भी मैं अनुभव के आधार पर कह रही हूं। इसीलिए कहा कि कई बार कई लोग हमारे पास भी आते हैं, बहन जी ये तकलीफ होती है, ये ऐसा होता है। मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, देखो भाई अगर आप मुझसे ये कहलवाना चाहते हैं कि ठीक है ये छोड़ो आप अपनी रीति, मैं ये बोलने वाली नहीं, क्योंकि बाबा ने जो कुछ हमें नियम मर्यादाएं दी है सोच समझ करके दी, क्या बाबा को पता नहीं था क्या कि किसमें हमारी स्थिति की सुरक्षा होगी। और इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि बहन जी थोड़ा सा भी बोल दे के अच्छा ठीक है बाबा की याद में रह के खा लेना, ये नियम तोड़ देना, भले ना उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो मैंने कहा कि उस बात के लिए मैं जिम्मेवार हो जाती हूँ, मैं जिम्मेवार हो गई ना, और उसके कारण जो कुछ भी हुआ तो कितनी बड़ी एक बोझ कहो या एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर। जब बाबा ने कहा है समझदार है, और जो समझदार है वो समझ करके चलते हैं, है ना। और अगर वो समझते हैं भाई मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है, तो आप खुद जिम्मेवारी लो अपने जीवन की, किसी और को जिम्मेवार मत बनाओ, किसी और को जिम्मेवार मत बनाओ कि भाई हमारे मर्यादाओं को तोड़ने के लिए आप हमारे साथ 50-50 पार्टनरशिप कर लो, ये तो हम करने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि बाबा ने जो हम बच्चों को नियम मर्यादा संयम दिए हुए हैं वो बहुत आगे चल करके कल्याण का रूप लेगा, जो आज भले हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन वो आगे चल करके बहुत कल्याण का भाव लिए हुए हैं और हमारी स्थिति को बहुत बड़ी हलचल से सुरक्षित रखने के लिए है। शायद आज मुझे पता न चले लेकिन आगे चल करके मुझे एहसास होगा उस बात का, और उस समय अंदर से यही निकलेगा थैंक्स बाबा, आपने पहले से हमें इस नियम के बंधन में बांधा था, तो मेरे जीवन के अंदर कितनी सुरक्षित स्थिति में अपने रख सका उस समय ये महसूस होगा। इसीलिए संयम नियम मर्यादा है, बाबा ने हर संयम नियम मर्यादाएं जो भी दिया है उसके पीछे बहुत कल्याण का भाव है, और जो उसको पकड़ते हुए चलता है वो बाबा की मदद को भी बहुत सहज अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकता है। तो इसीलिए हमारी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए ये 5 स हमेशा याद रखें। जो स्वस्थिति के रक्षक है वही वास्तव में यज्ञ रक्षक बन सकता है, वो जहां भी होगा जिस भी कंडीशन में होगा लेकिन वो यज्ञ रक्षक ही होगा, है ना। तो इसीलिए ऐसे बाबा के बच्चे हमें बनना है कि हम अपनी स्थिति की रक्षा करते हुए यज्ञ रक्षक, बाबा ने ये जो ज्ञान यज्ञ रचा है उस ज्ञान यज्ञ के भी रक्षक हम बन करके चले, भले रहे कहां भी, लेकिन बेहद का ये यज्ञ है। खाली मधुवन को यज्ञ नहीं कहा जाता, ये बेहद का यज्ञ है जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने वाला है। तो वो कहां भी होंगे सारे वर्ल्ड के अंदर ये बाबा ने यज्ञ रचा है और मैं उस यज्ञ का एक हिस्सा। तो आप अपने आप को कभी भी उस यज्ञ के यज्ञ से अपने आप को अलग महसूस नहीं कर, आप भी यज्ञ के ही हिस्से हैं। तो जो स्वस्थिति की रक्षा करता है वो यज्ञ के रक्षक स्वतः बन जाते हैं। उस यज्ञ के अंदर कभी कोई विघ्न रूप बन नहीं सकते हैं। तो स्वस्थिति के रक्षक हमें बनना है। पेपर जरूर आएगा, बातें जरूर आएगी, अनेक प्रकार से बातें आएगी, लेकिन फिर भी दृढ़ता जहां है वहां सफलता समाई हुई है। और बाबा के आशीर्वाद के छत्र छाया आप हमेशा अपने ऊपर महसूस करेंगे। ठीक है, ओम शांति।
मन में मेरे प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम्हें सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।